तप कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। आज हमारी भट्टी का ये अंतिम दिवस है, तो अंतिम दिन पर तो विशेष छाप पड़नी चाहिए। शुरुआत और अंतिम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसके लिए आज सवेरे के सत्र में हमारे पास जैसा विषय है त्याग तपस्वी जीवन, ऐसे ही विषय के धनी जीवन में अपनाने वाले अनमोल रतन, बाबा के अनमोल रतन, जिनके ऊपर बड़ों की भी कृपा और दुआएं बहुत बरसी हैं, दादी जी और दीदी जी की, जिन्होंने इन दादी दीदी से न केवल सीखा है बल्कि झोली को भरपूर किया है, आज वो हमारे सामने हैं। आप ग्राम विकास के भी वाइस चेयरपर्सन हैं, ग्राम विकास विंग के, तो आज हमें अपने ही जीवन के द्वारा त्यागी तपस्वी जीवन कैसे बनाएं, किसे कहते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे राजू भाई जी। जोर से तो बजाओ, सवेरा है।
ओम शांति। मीठे मीठे बाबा की मुरली ही हम सबको त्याग और तपस्या की प्रेरणा देती है। आज की मुरली में दोनों विषय बाबा ने ले लिए। मैंने कहा जिस दिन मुझे विषय मिलता है बाबा पहले ही स्पष्ट कर देता है, तो आज बाबा ने त्याग की परिभाषा क्या बताई। जब वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है, और आप बच्चों का त्याग है देह सहित, देह की पुरानी दुनिया का, और उसका आधार है वैराग्य। तो बाबा ने आज इस बात को ठप्पा लगाया। और तपस्या की कौन सी बात सुनाई, किसको याद है? वरदान में था मेरा बाबा, यही तपस्या है, यथार्थ पुरुषार्थ। विधि पूर्वक पुरुषार्थ है तो सिद्धि अवश्य मिलती है। तो जब हम दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो जीवन तपस्वी बन जाती, क्योंकि एक बाबा दूसरा न कोई, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और बाबा ये भी कहते हैं जब बेहद का वैराग्य आता है तो तपस्या का आधार भी बेहद का वैराग्य है। तो इस प्रकार बाबा की मुरलियों से हम सबको त्याग तपस्या की जीवन बनाने की प्रेरणा मिलती रही है। लेकिन कभी कभी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे अपना त्याग प्रकट करके लोगों को डरवा देते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो ये त्याग करना पड़ेगा, ये त्याग करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने मना किया है। बाबा कहता बच्चे त्याग नहीं दिखाओ, भाग्य दिखाओ। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, कैसे बाबा ने हम सबका इतना ऊंचा भाग्य बनाया है, त्याग क्या किया। अगर देखा जाए जो दुनिया वालों को दिखाई देता है उसमें दिखाई ये देता है कि एक तो सवेरे सवेरे उठते हैं, लोगों को सवेरे की नींद बहुत प्रिय लगती है, तो 4 बजे उठ करके योग करते हैं तो उनको लगता है बहुत बड़ा त्याग है इनका, निद्रा का त्याग कर देते हैं। सवेरे सवेरे उठ करके स्नान पानी करना, स्वच्छ होना, तो ये त्याग है या भाग्य है? इसी से तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दिन अच्छा हो जाता है, प्रारंभ अच्छा होता है। लेकिन लोगों के लिए लगता है बहुत बड़ी बात है, इतना सवेरे सवेरे उठना, रोज नहाना धोना, तो ये त्याग एक स्थूल में ये दिखाई देता है। और दूसरा, हम इधर उधर खाते पीते नहीं हैं, तो उनको लगता है आज ये पार्टी, आज ये समारोह है, और इसमें लोग भाग नहीं लेते, बहुत बड़ा त्याग है। सब लोग खा पी रहे हैं और ये लोग देख रहे हैं, खाते ही नहीं हैं। तो हमने त्याग किया या अभी भाग्य है हमारा? हा? पक्का लगता है? अच्छा, क्या त्याग किया? तामसिक राजसिक अशुद्ध भोजन का ही त्याग किया ना, उससे हमारा मन शुद्ध तन शुद्ध हो गया, तो ये भाग्य बन गया हमारा। और इधर उधर खाते नहीं है इसलिए स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और मन भी शुद्ध रहता है, क्योंकि किसी ऐसे विकारी के, क्रोधी के हाथ का नहीं खाते। तो ये त्याग नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन लोग समझते हैं त्याग है। और तीसरा, बाबा कहता है, दिखाई देता है कि ये ड्रेस चेंज कर लिया इन्होंने, सफेद सफेद ड्रेस, कईयों को तो बड़ा खराब लगता है, अगर बहनें माताएं सफेद साड़ी पहन के कहीं चली जाती, कहती क्या हो गया तुमको। तो ये हमने भड़कीले वस्त्रों का त्याग किया, बहुत फैशन का त्याग किया, तो उसको भी लोग समझते हैं ये बहुत बड़ा त्याग है। और हम कहते बहुत बड़ा भाग्य है जो ऐसी ड्रेस बाबा ने हमको पहनाई है, जरा भी दाग लग जाए फट से धुलाई करना पड़ता है, गंदी ड्रेस नहीं पहन सकते, दूसरे दिन पहनने की भी दिल नहीं करेगी, रोज धुलाई होगा तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर में कोई खुजली नहीं होगी। तो इसलिए लोगों को दिखाई देता त्याग है, लेकिन बाबा कहता बच्चे त्यागी नहीं, आप तो बहुत भाग्यवान हो, छोटा छोटा ये त्याग करके तो महान भाग्यवान बन जाते हो। लेकिन त्याग का मूल आधार क्या है? जैसे आज वैराग्य की बात चली, तो वैराग्य से सन्यास कर लेते हैं लोग, वैराग्य आता है ना तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। बाबा ने हमको वो त्याग नहीं सिखाया, घर गृहस्थ में रहो, पारिवारिक जीवन में रहो, सब कुछ संभालो, लेकिन उसके बीच में आपकी वृत्तियों में त्याग समाया हुआ हो, उस त्याग के तीन फाउंडेशन हैं, और वो अगर हमने पक्के कर लिए तो ये त्यागी जीवन बहुत सुखमय जीवन, भाग्यवान जीवन है। एक बाबा कहता है निमित्त भाव, जो कुछ है हम सबके पास, बाबा ने जो कुछ दिया है संभाल रहे हैं, उसमें निमित्तपन का भाव है, ये सब बाबा का है, बाबा ने दिया है हम संभाल रहे हैं, निमित्त उसने मुझ आत्मा को बनाया है, ये मेरा भाग्य है। तो जब निमित्तपन का भाव आ जाता है तो मेरेपन की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि दुख का कारण है मेरा मेरा मेरा। कहते एक दुकानदार ने बहुत कमाई की, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाई और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन उसका एक बार उस दुकान के अंदर आग लग गई, तो वो उस घटना को, इतना कमाया था, इतनी बड़ी दुकान थी, करोड़ों का सामान था, वो सब उसकी आंखों से जल रहा था, तो जलता हुआ देख करके वो एकदम शॉक में आ गया, उसको पैरालाइज जैसा बीमारी आ गई, पड़ गया जाकर के बिस्तर पर। बहुत उसका इलाज किया गया, बहुत इलाज किया गया, हर प्रकार के डॉक्टर्स आए, देखते रहे क्या है, कोई की दवाई उसको सूट नहीं करती थी। तो उधर से एक संत आए, वो आकर के कहते हैं इसकी दवाई है मेरे पास, लेकिन अगर आप परिजन परिवार वाले चाहो तो संसार से ऐसे व्यक्ति का एक कुर्ता ले आओ जो बहुत प्रसन्न और खुशी सुखमय जीवन जीता हो। तो संत के कहने पर उनके परिवार वालों ने पूरी दुनिया ढूंढी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति उनको मिल ही नहीं रहा था जिसके पास ऐसा कुर्ता हो, जो सदा खुश और प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति हो। सबको कोई न कोई दुख था, कोई न कोई तकलीफ थी, कोई न कोई प्रॉब्लम थी। लास्ट में चलते चलते एक उसको गरीब किसान मिल गया, वो बड़ा प्रसन्न था, बड़ा सुखी था, बड़ा खुशमय था। तो उसको उसके परिवार वाले पकड़ के ले आए कि चल भाई तेरे से कुछ कल्याण हो जाएगा मेरे बाबू का, पिताजी का। तो जब वो आए तो बोला तुम अपना कुर्ता दे दे। बोला मेरे पास कुर्ता ही नहीं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। बोला ऐसे रहता फिर भी इतना सुखी है, इतना प्रसन्नचित रहता, माना चीजों की जरूरत नहीं है, प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए कुर्ते की भी जरूरत उसको नहीं है, तो इतना खुश रहता है। और तो उसका जो शौक था ना कि हमारा इतना सब चला गया, इतनी प्रॉपर्टी चली गई, कहता एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है इतना प्रसन्न है, इतना खुश है, उसको देख करके उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो आज की दुनिया वाले सब समझते ये साधन हो, ये सुविधाएं हो, ये चीजें हो, तब हम सुखी रहेंगे। दुनिया के अंदर भौतिकवाद की, भौतिक चकाचौंध के अंदर सब भाग रहे हैं और उसी में सुख का अनुभव करते, खुशी का अनुभव करते। लेकिन बाबा ने हम सबको कहा बच्चे ये जो कुछ भी है ये तिल सम का खेल है, किसी दिन भी ये सब खत्म होने वाला है। इतना अंदर से वृत्तियों में वैराग्य है और उसका आधार है अनासक्त और उपराम वृत्ति। जितना अनासक्त वृत्ति बनती जाएगी, सब कुछ देखते हुए, सबको प्रयोग में लाते हुए भी वृत्तियों में आसक्ति नहीं है, यूज कर रहे हैं लेकिन ममत्व से, ममता से नहीं, ठीक है तो यूज कर रहे हैं, नहीं तो न्यारे और प्यारे हैं। तो उपरामता और अनासक्त वृत्ति त्याग का दूसरा आधार बनता है। और तीसरी बात है ट्रस्टीपन की भावना, क्योंकि ये सब कुछ बाबा ने दिया है, ये तन भी उसकी अमानत है। बहुत बहुत भाग्यवान है जो हम सबको ये ऐसा सुंदर तन मिला है। भले कोई का बीमार है, रोगी है, कोई प्रॉब्लम भी है, तो भी बाबा कहता है कम से कम इस तन से भगवान के मुरली तो सुनते हो, योग तो करते हो, सेवा भी कर लेते हो, तो ये बहुत बड़ा भाग्य है, त्याग नहीं है। ऐसा सोच करके कभी नहीं सोचना कैसा तन मिल गया, कैसा मन मिला, कैसा संबंध मिले। बाबा कहता दुखी होने की जिसकी आदत होती ना वो दूसरों से भेंट करके दुखी होता है, बाकी जो है उसके पास जितना है अगर उसको सोचता है तो हमको बाबा ने सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। इसलिए जो है वो प्रभु अमानत है। इतना ईमानदारी से, इतना वफादारी से तन मन धन संबंध को निभाना, ट्रस्टी बन करके उसको संभालना, न्यारे और प्यारे बन करके रहना, ये त्याग का मूल आधार है। और जब ऐसा त्यागी जीवन दिखाई देता है फिर इसके सूक्ष्म त्याग तो फिर ज्ञान में आने के बाद पता चलता है क्या क्या हमको त्याग करना पड़ता है। उसमें भी बाबा कहता है बच्चे त्याग की बड़ी गहरी परिभाषा ये है कि मान लो अगर कोई आपके मुताबिक आपके अनुसार कर्म नहीं है, आपके कहने अनुसार लोग नहीं चलते हैं, जो चाहते हो ऐसा आपका पूर्ण नहीं होता है, हर परिस्थिति में हर समय अपने आप को मोल्ड कर लेना, एडजस्ट कर लेना, ये भी बहुत बड़ा त्याग है, बहुत सूक्ष्म त्याग है। क्योंकि उसके अंदर कभी स्थान का त्याग करना पड़ता है, कभी मान सम्मान का त्याग करना पड़ता है, कभी कोई सुविधाओं का, चीजों का त्याग करना पड़ता है, तब हम किसी के साथ एडजस्ट होकर के चल सकते हैं। तो अपने आप को मोल्ड कर लेना हर परिस्थिति के अंदर एक बहुत सूक्ष्म त्याग है। त्याग वृत्ति वाला ही अपने आप को मोल्ड कर सकता है। तो त्याग की बहुत गहरी गहरी परिभाषा बाबा हमें सुनाते हैं। अभी आप सोमवार की इतवार की मुरली सुनते हैं, 82 में बाबा ने त्याग का बहुत सुंदर कोर्स कराया। एक मुरली चली, दूसरी मुरली चली, फिर बाबा ने 7-8 मुरलियां त्याग पर चलाई और फिर लास्ट में सर्वस्व त्यागी की परिभाषा स्पष्ट की, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई मेरापन नहीं, मैंपन नहीं, त्याग का भी त्याग कभी ये वर्णन न किया जाए मैंने त्याग किया है। इतना बड़ा सर्वस्व त्यागी की परिभाषा है, जिसमें देह के ऊपर बाबा ने स्पष्टीकरण किया, फिर कर्मिंद्रियां जो हमारे नजदीक की हैं, इनका कैसे त्याग, इनके साथ रहते, इनको कंट्रोल में रखना, इनके अधीन न होना, ये भी बहुत बड़ा त्याग है। देह कर्मिंद्रियां संबंध संबंध निभाते हुए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो करके रहना, किसी में मोह ममता न हो, ये भी बहुत बड़ा त्याग है। इसी प्रकार बाबा ने और कई प्रकार की परिभाषा सुनाते सुनाते कहा है, बच्चे विकल्प और विकर्म जो हो रहे हैं, विकल्प उठ रहे हैं, संकल्प में नेगेटिविटी आती है, किसी पर आत्मा प्रभावित हो जाती है, किसी से घृणा कर लेती है, किसी से बहुत राग है, किसी से द्वेष है, तो उसका भी त्याग चाहिए। न किसी से राग हो बहुत अच्छा लगता है, किसी पर प्रभावित हो गई आत्मा, और किसी से एकदम घृणा है, नफरत है, तो ये भी ठीक नहीं, वो भी हिसाब किताब बनाता है, उसका भी त्याग चाहिए। तो महात्यागी, त्यागी और सर्वस्व त्यागी की अभी आप मुरलियां सुनेंगे, इसी एक दो महीने के अंदर वो 7 दिन का कोर्स बाबा कंटिन्यू करा रहा है एक दूसरे के बाद। तो त्याग में सबसे ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए ध्यान रखने की बात है, जो हमारी बुद्धि इन्वेंटर है, अच्छे विचार हैं बुद्धि के अंदर, अच्छी अच्छी प्लानिंग आती है, अच्छे विचार आते हैं, कभी कभी उस अच्छाई का घमंड हो जाता है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरी बहुत अच्छी इन्वेंटर बुद्धि है, प्लानिंग बुद्धि है, बहुत अच्छे अच्छे नए नए ख्याल बाबा टच करता है मुझे, तो उसमें भी कई बार चलते चलते ब्राह्मण आत्माएं अपने मैंपन की बुद्धि के अहंकार में आ जाती हैं। बाबा कहता ये भी बहुत बड़ा त्याग चाहिए। कई बार बाबा कहता है कोई बच्चा किसी को समझाता है और वो सामने वाले को तील लग जाता है, वो ज्ञान में चल जाता है, समझाने वाला समझता मैंने बहुत अच्छा समझाया, उसे थोड़ा सा अपना बुद्धि का समझ का अहंकार आ जाता है। कितनी मुरलियों में बाबा ने कहा बच्चे ये बाबा समझाता है आकर के, बाबा प्रवेश करके अपना काम करता है, तुम्हें अहंकार नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार का त्याग जिसमें हमारी बुद्धि के मैपन में घमंड में ना आ जाए, उसका बहुत सूक्ष्म त्याग है। कोई हम ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवाएं हमको मिल गई, परफेक्ट सेवाएं, अच्छी सेवाएं हैं, सब मेरी महिमा कर रहे हैं, तो उस महिमा में भी महिमा सुन करके प्रसन्न होने का जो एक खुशी होती है, कई बार बाबा कहता है बच्चे अगर किसी की महिमा से प्रसन्न हो गए और कल ग्लानी हो गई, उसमें दुखी हो जाएंगे, तो इसलिए उसका भी बहुत सूक्ष्म त्याग चाहिए। प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न हो जाना और ग्लानी करने वाले से किनारा कर लेना, ये भी बहुत गहरा त्याग है, इसकी परिभाषा है। इसलिए कभी भी जो सेवा बाबा करा रहा है मेरा भाग्य है, बाबा ने मुझे यूज कर लिया, सदा ध्यान रखना, कोई भी कर्म करना, कोई अच्छे से अच्छा कर्म आपके द्वारा हो, मान लो आप एक बढ़िया सेंटर ही बना के देते हैं, बहुत अच्छी महिमा होती है, बहनें भी बहुत खुश हैं, भाई बहनें आते हैं, उनको बहुत सुख मिलता है, सब आपको दुआएं देते हैं, थैंक्स देते हैं, लेकिन कई बार चलते चलते आपने जो पुण्य कर्म किया उसका थोड़ा सा आता है मैंने किया, मैं नहीं करता तो कोई यहां करने वाला नहीं था, ये जो मैंपन अंदर सूक्ष्म में रहता है ना, इसका भी बहुत सूक्ष्म त्याग चाहिए। बाबा आपने करा लिया, मेरा भाग्य बना दिया, जितना गुप्त रहेंगे उतना आपका गुप्त भाग्य बनता जाएगा, तो सूक्ष्म में भी अपनी महिमा अपनी प्रशंसा स्वीकार करने का ख्याल ना आए। और कितनी बार कईयों को अपने अनुभवों का भी अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा अनुभवी हूं, बहुत अच्छा मेरा योग है, मेरे जो संकल्प चलते हैं वो सिद्ध होने लगते हैं। इसको थोड़ा सा और महीनता से समझना, ये क्या है, ये भी अहंकार का ही स्वरूप है। और जब इतना कुछ होता है तो उसको चलने में रोब दिखाई देता, चलेगा फिरेगा तो चले बड़ा पता नहीं किस नशे में रहता है। नशा अच्छी चीज है, रूहानी नशा होना चाहिए, रूहानियत का नशा होना चाहिए, लेकिन वो अंदर अंदर समझता है मैं बहुत अच्छा अनुभवी हूँ, मेरे अनुभव से तो इतनी सेवाएं हो रही हैं, मेरे अनुभव से सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं अनुभव की अथॉरिटी बन गया हूँ। बाबा कहता रे बच्चे, कई बार एक बड़ी हंसी की कहानी सुनाता है, चूहे को हल्दी की गांठ मिली और समझने लगा मैं पंसारी बन गया। सुना है, बाबा की मुरली में आता है, सिंधी शब्द आता है वैसे, चूहे को है ना, चूहा कहीं किसी दुकान में पंसारी के घुस जाए और एक हल्दी की गांठ उठा करके अपनी उसमें रख दे बिल के अंदर और सोचे मैं तो बहुत बड़ा पंसारी, बहुत बड़ी दुकान वाला बन गया। ऐसे ही थोड़ी सी विशेषता किसी बच्चे के अंदर आ जाती है, थोड़ा कोई एक दो अनुभव हो जाते हैं, समझता मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा हो गया। तो ये भी क्या है, बहुत गहरा त्याग है, इसमें भी ना आए बाबा आप तो सागर हो, मैंने तो आपकी एक बूंद पाई है, आपने इतना दिया है, भाग्य है मेरा। तो सूक्ष्म में एक निरहंकारी स्थिति बनती जाए तो अहंकार का त्याग स्वतः होता जाएगा। इच्छाएं बढ़ती जा रही है व्यक्ति की, एक इच्छा पूरी होती दूसरी आती, उन इच्छाओं का त्याग, नाम का, मान का, शान का, पद का, पोजीशन का, बहुत बड़ी त्याग की गहरी फिलॉसफी है। और ऐसा त्यागी जीवन जब बिल्कुल निराकारी निरहंकारी स्थिति बनती है तब तपस्वी बनता है। और तपस्वी के चार पांच आसन हैं, हम तपस्वी आत्माएं हैं, उनका एक सबसे अच्छा आसन बाबा ने भ्रकुटी दिया है। वो हम स्थूल आसन नहीं ले रहे हैं, कहीं बैठ करके पांथली मार करके बैठ गए, आंख नाक कान बंद करके तपस्या कर रहे हैं, चलो ठीक है, भक्ति मार्ग के अंदर लोगों ने कोई न कोई सिद्धि पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और उसके लिए कोई त्याग करके, खाना पीना छोड़ करके, नींद छोड़ करके, सुख के साधन छोड़ करके बैठ गए, भगवान को प्रसन्न कर लिया। यहां तक असुरों ने भी ये विधि अपना ली, उन्होंने ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। भोलानाथ तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता, कहते एक बार भस्मासुर ने तपस्या की, वो राक्षस था, असुर था, और उसने भगवान को पसंद कर दिया। भगवान प्रसन्न होके कहते तूने बहुत अच्छी तपस्या की, वर मांग ले। तो उसने भगवान से क्या वर मांगा, कि मैं जिस पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। भगवान तो तथास्तु कह के चले गए। फिर वो जब तथास्तु कह करके चले गए तो सोचा इसी पर क्यों ना हाथ रख दूं, दौड़े उसके पीछे पीछे, भगवान आगे आगे भागे, क्योंकि वरदान था अगर उस पर हाथ रख देंगे तो वही खत्म हो जाए। तो उसने उसको मारने के लिए, भगवान को ही खत्म करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। अब भगवान को कौन मार सकता था, कहानी है। तो क्या किया उन्होंने, कहते उन्होंने फिर मोहिनी रूप रख करके, मोहिनी रूप रच करके, और कहा तेरे साथ मैं डांस करूंगा। डांस करने के लिए अनेक पोज अपनाते, कहते जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करना, फॉलो करना। तो कहते मोहिनी रूप में जब उसने डांस करना शुरू किया तो ऐसे धीरे धीरे अपना हाथ ऐसे रखा, तो भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और रखते ही खुद भस्म हो गया। कितनी अच्छी कहानी बताई है। और बाबा कहता है मेरे भस्मासुर बच्चे भी यहां है कहीं, अपने आप को ही भस्म गए। भगवान से वरदान तो मिल गया, लेकिन उस वरदान का सही उपयोग नहीं करते हैं तो वरदान उनके लिए भस्म करने वाला बन जाता है। इसलिए कहता है कभी भस्मासुर नहीं बनना। बाबा की शिक्षाएं जो मिल रही उनको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, अगर अवज्ञा की, भगवान पर ही हाथ रखने की कोशिश की, तो कोई नई युक्ति से आपको ही भस्म कर देगा। इसलिए बाबा की तपस्वी आत्माओं को कितने वरदान प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आसन जरूरी है। मैं पांच आसन आपको बता देता हूं। एक तो बाबा एक रस स्थिति का आसन बताता है, एक रस स्थिति, क्योंकि तपस्या के लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर एकाग्रता नहीं है तो मन भटकेगा, इधर उधर कहीं न कहीं बैठेंगे, योग में फट से मन भाग जाएगा। अभ्यास करो तो एक रस स्थिति में हम कितना समय रह सकते हैं, शून्यता नहीं है तपस्या के अंदर, आपको कोई शून्य बनने की जरूरत नहीं। मन को शांत कर दिया, संकल्प शांत हो गए, वो आसन एक रस का नहीं है। एक रस माना एक के रस में, एक के प्यार में, एक की लगन में समाने का अभ्यास, उसके सिवाय और कोई दूसरा रस नहीं खींचे, दैहिक रस नहीं खींचे, इंद्रिय रस नहीं खींचे, एक बाबा का रस प्यार उसमें आत्मा समा जाए, वो आसन बन जाता है। और भ्रकुटी आसन तो इतना अच्छा है, चलते फिरते अपने आत्मा स्वरूप में स्थित रहो, आत्मा को देखो, आत्मा देख के बात करो, चलते फिरते कर्म करते आत्म अभिमानी स्थिति ही तपस्या है, ये आसन है। और इस आसन में कोई हमको बैठने की खास जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्मृति रहे कि मैं जो हूं जैसा हूं उस स्वरूप में स्थित रहूं। तीसरा, आपने देखा होगा तपस्वी लोग एक आसन होता है जो शेर की या बाघ की खाल होती है उसके ऊपर बैठते हैं, वो निश्चिंतता की निशानी है, निश्चिंत स्थिति, भय मुक्त स्थिति, ये तीसरा आसन है हमारा। कोई भी भय नहीं, किस चीज का भय, सबसे बड़ा भय तो मौत का ही होता है ना लोगों, अब बाबा ने तुमको पहले ही मार दिया, बचे हैं क्या, जीते जी हम सब मर गए, क्या चाहिए, शरीर चला जाएगा तो भी बाबा कहता है तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। इतना अच्छा अभ्यास हो कि हम सब मर्जी वा बाबा के बच्चे, अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, और उस स्मृति में रह करके निश्चिंत स्थिति, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई गम नहीं, बैठ जाओ योग में, लग जाएगा अच्छा योग, तपस्वी बन जाएंगे। चौथा, आपने देखा होगा वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते और सिद्धि जितने प्राप्त किए, आप बौद्ध की कहानी पढ़ो, महावीर की कहानी पढ़ो, जितने भी हमारे महान पुरुषों ने सिद्धियां प्राप्त की उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की। बनारस के अंदर सारनाथ के अंदर देखो बौद्ध जी कैसे तपस्या करें, एक पीपल का शायद वृक्ष है बड़ा, उसके नीचे उसकी तपस्या की यादगार बनाई है। बाबा कहते हैं बच्चे ये वृक्ष के नीचे बैठना क्या है, क्या निशानी है, ये कल्प वृक्ष, ये नॉलेज फुल स्टेज है, पूरे वृक्ष का ज्ञान, आत्मा को सारे वृक्ष का ज्ञान है, बीज से कैसे उत्पन्न हुआ वृक्ष, ब्राह्मणों को सब कुछ पता है, बीज रूप बाप है, तने में हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा आदि पिता जिसको बाबा कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, शिव बाबा को कहते हैं गॉड फादर, जड़ में, तना माना जड़, फाउंडेशन में, तो जड़ में बैठ करके हम तपस्या कर रहे हैं और पूरे वृक्ष की नॉलेज है, देवता धर्म कैसे निकला, फिर इस्लाम कैसे, बौद्ध कैसे, क्रिश्चियंस कैसे, संन्यास कैसे, और उसके शाखाएं उपशाखाएं तने से कैसे कैसे निकलती गई, थुर एक ही है लेकिन उससे कितना बड़ा वृक्ष बना, विस्तार हुआ और इसका भी बिल्कुल अंत समय आ गया, अब फिर से वृक्ष से कलम लग करके नया धार तैयार हो रहा है। तो ये फुल नॉलेज की स्थिति है, जो नॉलेज फुल आत्मा है वो सहज रूप से अपने तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर के पूरे वृक्ष को मनसा से सकास देती है। तो तपस्या के लिए वृक्ष के नीचे बैठना माना पूरे कल्प वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में लाना कि बाबा ने मुझे इसको हरा भरा रखने के लिए तने में तपस्वी स्वरूप में बिठाया है। अभ्यास करना, कभी कभी बहुत सारे वैरायटी अभ्यास करते हैं योग में, कराते हैं बहने हमारी भाइयों भाई लोग कराते हैं, लेकिन ये भी बहुत सुंदर अभ्यास है कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में, तने में, फाउंडेशन के साथ, बाप दादा के साथ, कामधेनु माँ एक तरफ है, कपल मुनि बाप एक तरफ है, बीच में बच्चे हैं और उनके साथ बैठ करके हम सब तपस्या कर रहे हैं, पूरे वृक्ष को शक्ति और सकास दे रहे हैं। पांचवा एक आसन दिखाते हैं, कमल आसन, कमल के ऊपर योगी को बिठा देते हैं। अब विचार करो कमल तो इतना फूल कितना नरम नरम है, उस पर कैसे बैठेगा कोई, उंगली भी रखो तो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, ये हमारे हल्केपन की निशानी है। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, कोई भी प्रकार का जवाबदारी हमने ले करके रखी है। बाबा तो जब से मिला तब से यही बच्चों को कहा है, क्या कहा है, बच्चे जो तुम्हारे पास जवाबदारी मुझे दे दो, मैं आ गया हूँ सर्वेंट बन करके। लेकिन बच्चे फिर भी कोई ना कोई उठा लेते हैं, आदत बनी हुई है ना बहुत दिन की, आदत के मजबूर हैं। इसलिए कहते हैं एक यात्री यात्रा पर जा रहा था, कोई साधन था अच्छा सा बैठा था उसके ऊपर, और उसके पास जो सामान था वो अपने सिर पर लेके बैठा था। यात्रा का आनंद बेचारे को नहीं आ रहा था, बैठा है लेकिन उसके सामान सारा सिर पर लेके बैठा है। तो लोगों ने कहा अरे तुम बैठा तो सामान भी रख दे, साथ साथ चला जाएगा। तो यहाँ भी बाबा कहता है बच्चे तुमको मैं अपनी गोदी में बिठा के यात्रा करा रहा हूँ। अब गोदी में बैठा हुआ बच्चा, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे बहू, मेरी सामान, मेरे सब, ये सब क्या है, ये सब ये जवाबदारी लेके बैठे हैं, चिंताएं लेकर के बैठे हैं, तो यो कैसे लगेगा। इसलिए बाबा कहता बहुत हल्के बनो, सब जवाबदारियां बाबा को समर्पित करो। बैठा है बाबा ले लेगा, लेकिन सच्चे दिल से दोगे तो, मेरे अधिकार से नहीं। कई बार कहते हैं बाबा ये सब तेरा है, लेकिन बाद में जब बाबा कहता अच्छा तेरा है तो अधिकार नहीं रखना, तो नहीं तेरा भी मेरा है। बड़ी युक्ति से बाबा का भी अपना बना लेते हैं। इसलिए बाबा कहता बच्चे जो जो मेरा मेरा कहते हो इसको तेरा करो और हल्के हो जाओ, संस्कारों को भी समर्पित करो। ये शूद्रपन के संस्कार को मेरे संस्कार समझ करके इनको यूज नहीं करो। बीच बीच में निकलते हैं लोग, समझते क्या करूं मेरी नेचर है। बोला तेरी नेचर कहां से आई, ये तो मध्यकाल की नेचर है। तुमको जब मैंने अपने घर से भेजा था तब तो नेचर थी नहीं, तुम तो देवी देवता थे, सर्व गुणों से संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, एकदम पवित्र शुद्ध आत्मा थी। लेकिन मध्यकाल के अंदर जब बॉडी कॉन्शियस में आए तो ये मध्यकाल के संस्कारों को तुम अपने मान गए, रावण के संस्कारों को अपना मान रहे हो। इसलिए संस्कारों का भी बोझ लेकर के नहीं चलो, उनको भी समर्पित करो। कोई भी संस्कार है कैसे समर्पित करें, विचार तो चलेगा ना, सुन रहे हो तो विचार चलाना। समर्पित करने की बहुत अच्छी विधि बाबा कहता है, जब आपको महसूस होता ना ये मेरा कड़ा संस्कार जो बार बार मुझे परेशान करता, बाबा के सामने जाओ। बाबा कहता कोई भी चीज कीचड़े वाली होती है ना डस्टबिन में डाली जाती है, बाबा का कमरा डस्टबिन वैसे नहीं है, लेकिन बाबा कहता जो कुछ है तेरे पास गंदगी अंदर की मेरे आगे आके लिख करके मेरे बॉक्स में डाल दो। बाबा को सामने रख करके बहुत प्यार से, बाबा ये संस्कार जो मेरे को सता रहा है, परेशान कर रहा है, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन बाबा कहता अगर महसूस करके, रियलाइज करके मेरे को समर्पित कर दोगे तो मैं सदा के लिए उसको समाप्त कर लूंगा। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से किया, रियलाइज नहीं किया, तो हजार बार लिखोगे तो फाइलें इकट्ठी होती जाएंगी, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, सच्चे दिल से बाबा को सुनाया और फिर रिवाइज न हो, उसके लिए दृढ़ता की प्रतिज्ञा। जो दृढ़ता का संकल्प है ये भी तपस्या है, तो दृढ़ता का संकल्प करके अपने आप को लाइट बना लो। बहुत हल्के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, संबंधों का बोझ, बहुत सारी जवाबदारियों का बोझ, मोह ममता का बोझ, बहुत सारे साधन सुविधाएं उनका विस्तार किया हुआ है उसका बोझ कभी चेक करना। मैं आत्मा बाबा की बनी हूं, कितने प्रकार के बोझ उठा के चल रही हूं, या बिल्कुल लाइट हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई। हल्की चीज तो वैसे भी कहां जाएगी, ऐसे हल्की चीज छोड़ दो ऊपर उड़ जाएगी, नीचे नहीं बैठेगी। तो वैसे भी हम सब आत्मा तो डबल लाइट है ही, डबल लाइट है ना, एक प्रकाश स्वरूप है एक हल्के हैं। और ये डबल लाइट स्वरूप में जब हम अपने आप को स्थित करते हैं, जो ये बोझ जो हमने क्रिएट किए हैं संकल्पों के, संस्कारों के, संबंधों के, पदार्थों के, जवाबदारियों के, सेवाओं के, बहुत सारे बोझ हैं, इसकी लिस्ट निकालेंगे ना वो बंधन बनते गए बोझ, और उस बंधनों के आत्मा जकड़ती गई। तपस्या क्या करेगी, तपस्वी जीवन बनानी है तो बिल्कुल लाइट हो जाओ, बाबा ये सब तुम ले ले, ये सब तेरा। जब अपने स्वरूप में स्थित होकर के बाबा कहेंगे तो कमल आसन आपको मिल जाएगा, फिर कीचड़ नहीं आएगा आपके ऊपर। कमल के साथ बहुत बड़ा नीचे परिवार है, कीचड़ भी है, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अलग है, न्यारा प्यारा है, सुंदर है। हम बच्चों को भी बाबा कहता है ऐसे कमल आसनधारी बनो, इतने निर्लिप्त होकर के रहो कोई के भाव स्वभाव का भी प्रभाव आपके ऊपर न पड़ जाए। इसके लिए तपस्या के लिए 6 बातें आपको नोट कराता हूं। नंबर 1 नोट करना, और बाबा की बातें हैं, मेरी अपनी नहीं है, ध्यान रखना, बाबा ने ही सुनाई है। 1 तो बाबा कहता है स्मृति में एक बाबा दूसरा न खोज। जो कोई पास्ट की स्मृतियां हमारे अंदर छपी हुई हैं, इस जन्म में जो किया है वो बार बार कई बार 4-5 साल की उम्र से अभी तक जो गलतियां पाप कर्म विकर्म हुए हैं वो संस्कार के अनुसार छपे हुए और याद आते रहते हैं, बीच बीच में इमर्ज होते रहते हैं। तो जो कुछ बीता है अभी तक के जीवन के अंदर बाबा को सुनाओ और उस बात को बिंदी लगाओ, पास्ट का चिंतन नहीं करो। बीत गया सो बीत गया, कोई भी कारण से हुआ होगा, देहमान के कारण हुआ, संग दोष के कारण हुआ, कोई पुराना हिसाब किताब था, कोई पुराना संस्कार था, उसके कारण माया ने गलत काम करा दिया, लेकिन अब मैं बाबा का बच्चा बन गया हूं, अब मैं उन बातों का सुमिरन नहीं करूं, उसको स्मृति में न लाऊं, उस स्मृति को फुल स्टॉप लगा करके उसको बार बार रिवाइज नहीं करूं। कई लोग उसको रिवाइज करके दुखी होते रहते, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया। मेरे बीती को भूतकाल कहा जाता है, और भूत तो हमेशा परेशान करता है, अगर भूत को याद करोगे तो दुखी होते रहोगे। तो भूत माना भूत, उसको भुला दो, और कल क्या होगा उसकी क्यों चिंता कर रहे हो, तो कल तो अच्छा ही होगा ना सब। अगर वर्तमान अच्छा है तो कल क्या होगा, कल क्या होगा, पक्का है नीचे है? माता है, कल क्या होगा, विनाश हो जाए तो अच्छा है सबको निश्चय, इतना होना तो है ना, इतने निश्चिंत हो, भले बम गिरने लगे। बाबा कहता बच्चे इतने निश्चिंत रहो क्योंकि हमने इतनी कमाई की है वर्तमान में, अगर सचमुच तन मन धन समय संकल्प स्वास्थ्य सफल किया है तो सफल करने वाले, तो एक शब्द बाबा का याद रखना, जो मेरे आज्ञाकारी सपूत बच्चे बन करके रहे हैं वो अंतिम सीन देखते हुए घुंघरू पहन करके डांस करेंगे, और जो बच्चे अवज्ञा किया है वो खून के आंसू बहाएंगे। ये बाबा के शब्द है, मेरे नहीं है, खून के आंसू बहाएंगे, क्यों, बहुत गहरा पश्चाताप होगा कि संगम का इतना अच्छा सुहावना समय, भगवान की पालना मिली, उनकी शिक्षाएं मिली, इतनी सुंदर गाइडेंस मिली, हर बात के लिए श्रीमत मिली, फिर भी मैं अलबेला रहा, मैंने गफलत की, मैं संग दोष में भूला हुआ रहा, मैंने कुछ सफल ही नहीं कर पाया। सब कुछ था, तन की शक्ति भी थी सेवा में नहीं लगाई, मन अच्छा था मनसा सेवा नहीं की, धन था धन भी बाबा के काम में सफल नहीं कर पाए, आखिर मेरा क्या होगा। वो पश्चाताप बहुत खराब है, इसलिए वो घड़ी ना आए। कल होगा सब अच्छा होगा, लेकिन जिसने वर्तमान को अच्छा किया उसके लिए अच्छा होगा। तो वर्तमान में अपना सब कुछ सफल करके स्मृति को एक बाबा दूसरा न कोई इसमें टिका देना ही तपस्या है, और स्मृति के साथ स्थिति। दूसरी बात, स्थिति इतनी अचल अडोल, कुछ भी हो जाए, कोई ऐसा हिसाब किताब मेरे सामने भी, शरीर का आ जाए, धन का आ जाए, परिवार का आ जाए, समाज का आ जाए, प्रकृति का आ जाए, लेकिन मैं अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर लूं कि वो कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को डगमग न कर सके। ये जो पढ़ाई और तपस्या के आपको चांस दिए जा रहे हैं, ये जो आपको भट्टियां मिल रही हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, हर ब्राह्मण आत्मा उस अंतिम पेपर के लिए तैयार हो जाए, और वो अंतिम पेपर स्थिति से पास होगा। आप सब जानते हैं बड़े बड़े धनवान करोड़पति लोग रोडपति बन जाते एक छोटा सा भूकंप आने से, और उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई खाना देता करके वो रोते हैं कि हमने इतना कमाया, इतना सब कुछ भर दिया और आज मेरा घर में सब होते हुए मैं दूसरे के हाथ से कैसे खाऊं, मैंने तो किसी को नहीं खिलाया। वो कितना पश्चाताप करते हैं। वो जब घड़ी आती है ना तो 90% लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनका दुख दर्द जो है ना सीन को देख करके होता है, उनको कुछ नहीं लगा है, वो सेफ हैं, लेकिन वो उस घड़ी को सहन नहीं कर पाते, इतनी बड़ी आपदा को देख नहीं पाते, स्थिति डगमग हो जाती। इसलिए बाबा अपने बच्चों को एक मंत्र देता है, बच्चे स्थिति आप सबके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, वो संपत्ति कोई काम आने वाली नहीं है, संबंध काम आने वाले नहीं है, कोई अड़ोसी पड़ोसी मित्र काम आने वाले अंतिम समय में नहीं है, लेकिन अगर मैंने अपनी स्थिति अच्छी बनाई है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आएगी तो मैं बाबा के पास जाऊं और बाबा मुझे सहज उसी परिस्थिति से क्रॉस करा देगा। स्थिति डगमग हो गई, हाय हाय करने लगे, क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैंने तो इतना सब पुण्य किए थे, इतना सब अच्छा काम किया, मेरे आगे ही पेपर आ गया, फिर कोई सहारा नहीं बनने वाला है। कोई की स्थिति बिगड़ जाती है, कहते भाई ध्यान रखना कुछ भी हो जाए लेकिन ब्रेन तो ठीक रहे, नहीं तो ब्रेन अपसेट हो गया तो क्या साथ मिलेगा, किसका साथ मिलेगा, कोई अपने भी अपना नहीं पूछते हैं, कहते इसको डाल दो जाके पागल खाने में। एक माता मेरे पास आई 4 दिन पहले, कहती है भाई जी करोड़ों रुपए की संपत्ति, मैं टीचर थी, मेरे पति जी बड़े ऑफिसर थे, बहुत पेंशन मिलती, बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन एक मेरा बच्चा पागल हो गया, दिमाग काम नहीं करता उसका। वो यहाँ ही आबू में एक मकान लेके रहने लगी, कहता ये रोज जाके शराब पियाता है, सिगरेट पीता है, इधर उधर लेट जाता है, गालियां देता है, मेरे को भी गालियां देता है, अड़ोसी पड़ोसी जो मिलते गाली देता है, और मेरी सारी जीवन सब पैसा मैंने इसके पीछे लगा रही हूँ, घर बेच दिया, सब कुछ कर रही हूँ, एक बेटा कहाँ ले जाऊं, आप मुझे कोई पागल खाना बता दो जिसमें मैं इसको भर्ती कर दूं। मतलब उसको संभालने के लिए माँ भी अभी तैयार नहीं, कौन संभालेगा, मन डिप्रेशन में चला गया। अब ऐसी घटना कोई कारण से हुई होगी, अब वो कारण तो मैंने ज्यादा नहीं पूछा, कोई पास्ट का भी हिसाब हो सकता है उसका, लेकिन ऐसे समय पर नजदीक के संबंध भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खूब अच्छी मन के चिंतन को अच्छे से अच्छा बनाओ। पॉजिटिव चिंतन से मन शक्तिशाली बनता है। बहुत अच्छे चिंतन करो, कुछ भी हो रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे इसको गलत विचार नहीं देने, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। जितना आप सकारात्मक चिंतन, बाबा कहता है बच्चे बुराई में भी अच्छा ही देखो। आज गुलाब का फूल गंदगी के अंदर होकर के फूल खुशबू दे रहा है, कांटों के बीच में होते खिला हुआ है, क्या आप इससे प्रेरणा नहीं ले सकते हो? भले गंदगी है, समाज गंदा है, परिवार वाले ठीक नहीं है, आप खुशबूदार फूल बनने के लिए उसमें से सुगंध उठाओ, स्थिति अच्छी बन जाएगी। अगर सोचोगे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये करते हैं, ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, उसके साथ ऐसे करते, तो नेगेटिव सोचने वाले की बुद्धि डिप्रेशन में धीरे धीरे चली जाती है। इसलिए अधिक सोचने की आदत और नेगेटिव सोचने की आदत बंद, तो स्थिति अच्छी बन जाएगी। अब स्थिति की बात आती है हमारी भावनाएं। हर आत्मा के प्रति कल्याण की शुभ भावनाएं। परसों के मूल्य में एक शब्द यूज किया बाबा ने, बाबा की चाहना क्या है, बाबा क्या चाहता है जी, हाँ बाबा की चाहना में शुभ चिंतक वृत्ति, शुभ चिंतन। और जब शुभ चिंतन आत्मा करती है तो शुभ चिंतन करते करते उसकी भावनाओं में सबका भला हो, भावनाएं उसकी चेंज हो जाती हैं। और जब भावनाएं चेंज हो जाती हैं तो संस्कार बड़े सरल और शीतल होते जाते हैं। भावनाओं के बाद हमारे संस्कार सरल और शीतल होते जाएं, और संकल्पों में बहुत शुद्धता, बहुत पवित्रता आ जाए। फिर सोमान लो, तपस्या के लिए 5 सोमान मैं आपको दे देता हूं। तपस्वी जीवन बन जाए अमृत वेले से रात तक, अगर वो 5 सोमान बार बार स्मृति में लाए। बाबा ने हजारों सोमान दिए हैं। अगर मुरली की अच्छी स्टडी आपकी है तो आप मुरली से रोज 5-10 सोमान नोट कर सकते हो। सबसे पहला सोमान तपस्या के लिए मैं सुना रहा हूं, मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। इस मस्तिष्क के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा मस्तक मणि हूं, और इस मस्तक मणि आत्मा को बाबा के पास ले जाकर के कभी कभी बाबा की मणि के पास पहुंच जाऊं। बाबा के पास बैठने में कितनी जगह चाहिए आपको? बाबा के तक कोई स्पेस नहीं चाहिए इसको, आके मेरे बाजू में बैठ जाओ। कभी योग में तपस्या के अंदर ऐसा अनुभव करना चाहिए कि मैं मस्तक मणि आत्मा उड़ करके गई और बाबा जहां बैठा है सूक्ष्म तन में, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दो लाइट चमक रही हैं। दो लाइट चमक रही है ना, कैसे दिखता है बाबा पता है? वतन में जब दीदियां जाती हैं, संदेशियां जाती हैं, तो एक बार गुलजार दादी से मैंने रूह ध्यान की थी, पूछा था दादी से, दादी आप कहती हो बाप दादा आपस में रूह ध्यान करते हैं, तो कैसे करते हैं? शरीर तो एक ही है, रूह ध्यान तो क्या मनो एक्टिंग करते हैं क्या? कभी एक बोलता है कभी दूसरा बोलता है। बोली नहीं नहीं, मनो एक्टिंग नहीं, आमने सामने करते। आमने सामने करते हैं, कैसे करते हैं? तो बोला एक साकार में जैसे ब्रह्मा बाबा थे और अव्यक्त में ब्रह्मा बाबा दिखाई देते थे। जब शिव बाबा आए तो शिव बाबा डायरेक्ट ब्रह्मा के तन में नहीं आए, पहले उन्होंने सूक्ष्म तन की रचना की, सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा का तैयार किया जो संपूर्ण स्वरूप था उनका, और उस संपूर्ण स्वरूप को ग्रहण करके फिर इस सृष्टि पर आए, साकार में प्रवेश हुए। फिर यही साकार पुरुषार्थ करते करते संपन्न बना, लेकिन उसके पहले उसका संपूर्ण स्वरूप वहां था, बाबा ने इमर्ज किया। तो अभी भी जब बाप दादा रूह ध्यान करते हैं तो अव्यक्त रूप में दोनों सितारे एक शरीर के अंदर लाइट के शरीर में चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे बाबा इस तन में आया वो अव्यक्त लाइट का शरीर दिखाई देता है, और साकार में जैसे ब्रह्मा बाबा का शरीर था ऐसे ब्रह्मा बाबा का अलग शरीर दिखाई देता है। तो जब डायलॉग करते हैं बाप दादा तो एक लाइट के शरीर से जैसे बोला और एक जैसे स्थूल शरीर से बोला, वो डायलॉग होता है, ऐसा दादी ने एक बार बताया था। तो ऐसे ही हम सभी भी अपनी स्मृति से मस्तक मणि बन करके इस भ्रकुटी पर बैठें और कभी कभी बाबा के बीच में, बाप दादा के बीच में जाके बैठ करके अनुभव करें। कितनी शक्ति है, कितनी पवित्रता है, कितनी शुद्धता है, कितनी सुगंधी है। आज कोई पवित्र आत्मा कहीं प्रवेश करती है उसके वायुमंडल को चेंज कर देती है। आज बाबा हमारे शांतिवन में जब आता है 25-30 हजार की सभा और चारों तरफ वायुमंडल के अंदर केवल बाबा ही शब्द होता है। दादी बैठी है, दादी के तन में बाबा है, सब भूले हुए होते, दादी का रथ दिखाई नहीं देता किसी, बाबा 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 एक वायुमंडल के अंदर आ जाता है। वो वायुमंडल, वो शांति, वो पवित्रता, वो सुख खुशी की लहर सारे वायुमंडल में छा जाती है, आत्मा का प्रभाव। ऐसे ही अगर हम बाबा के पास जाएं, कुछ समय के लिए बैठ जाएं, तो तपस्वी मूर्त आत्मा को बाबा की पवित्रता से शुद्धता आती जाएगी, बहुत पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। तो मैं मस्तक मणि आत्मा हूं, मैं बाबा के नयनों का नूर हूं। जैसे नूर बिना जहान नहीं, कहते अगर नूर ही नहीं, आंख नहीं तो जहान नहीं, ऐसे इन आंखों के बीच में मैं नूर की तरह चमकता हुआ सितारा, बाबा के नयनों में बैठो, कभी अपने नूर में बाबा को बिठा लो आकर के, इस नयनों से बाबा ही दिखाई दे, बाबा के सिवाय कुछ नहीं, अंदर ही बाबा, बाबा का अनहद नाद। ये दूसरा सोमान है। तीसरा, मैं बाबा का दिल तख्त नसीन बच्चा हूं, दिल पर राज्य करने वाला हूं, जो बाबा कहे दिल में मेरे बाबा बैठे। बाबा कहता बच्चे अपने दिल में मुझे बिठाओ, लेकिन बहुत शुद्ध दिल चाहिए, कोई भी इधर उधर की बातें दिल में होंगी तो बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए मैं दिल तख्त नसीन बाबा का दिल रुबा बच्चा हूं, चौथा समान मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूं, भुजा बन करके सेवा करेंगे ना तो अपने आप बाबा आपके साथ साथ रहेगा, अलग नहीं हो सकता। और पांचवा, मैं मास्टर दाता हूं, बाबा ने मुझे अपने समान बनाया है, मुझे सबको देना है, मुझे कुछ किसी से नहीं लेना है। दातापन की स्थिति संपूर्णता संपन्नता की निशानी है। जितना आप अपने आप को ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से, सब प्राप्तियों से भरपूर करते जाएंगे उतना मास्टर दाता बन जाएंगे। देना है बस, दृष्टि से दो, बोल से दो, संपर्क से दो, अपने अच्छे वाइब्रेशन से दो, जो संपर्क में आए कुछ न कुछ उसको मैं दूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, आप मुझे रिस्पेक्ट दें, मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं कुछ दूं। अपने आप वो देगा जो देना है। तो अगर मास्टर दाता स्वरूप में रहेंगे तो आप सदा के योगी स्वतः बन जाएंगे। तो ये 500 मान लेकर के आप तपस्या करो, तपस्वी जीवन अनुभव होने लगेगी, मैं तपस्वी आत्मा हूं। त्याग, तपस्या, सेवा, और तपस्या का आधार एक लगन की अग्नि प्रज्वलित रहे। लगन माना बाबा से बहुत दिल का प्यार, वो योग की तपस्या का आधार है। और दूसरा, संकल्पों की बहुत अच्छी दृढ़ता, कुछ भी सहन करना पड़े, त्याग करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन संकल्प माना संकल्प, उसको कोई हिला नहीं सकता। और तीसरा, एकाग्रता का, स्थिरता का अभ्यास। ये तीन फाउंडेशन है तो तपस्वी जीवन बन जाएगी। तो बाबा हम सबको त्यागी और तपस्वी इस ब्राह्मण जीवन में देखना चाहते। स्थूल चीजें तो बाबा ने बहुत कुछ दी हैं, मैं कहते बच्चे आपके लिए सब हैं, लेकिन भोगते हुए भी अनासक्त वृत्ति, कुछ भी मेरा नहीं। साधन है सेवा के लिए बाबा ने दिए हैं, खूब सेवा करो, दिल से करो, लेकिन मोह ममता रख करके दुखी नहीं होना। ओके, ओम शांति। पहले 5 मिनट योग कर ले। सभी बाबा की मस्तक मणि आत्मा बन करके अभ्यास करके देखो कितनी तपस्वी जीवन है। एकदम इस भ्रकुटी की गुफा में मैं मस्तक मणि आत्मा चमक रही हूँ, और इस मस्तक से अपने संकल्प के विमान से, बुद्धि के विमान से बाबा के मस्तक में जाके चमकने लगो।
प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
मुरली में से कैसे हम अपने लिए छोटी छोटी बातें निकाल कर पुरुषार्थ में लगे, और कैसे त्यागी तपस्वी बने, क्या क्या स्वमान रखें, कितनी सुंदर गहराई राजू भाई जी ने दी। आपका बहुत 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 शुक्रिया। यूं भी जब आप मुरली पढ़ते हैं रोज, मुरलीधर की मुरली है, लेकिन उसमें जब मुख्य सार पढ़ते हैं, स्वमान स्लोगन पढ़ते हैं, वरदान पढ़ते हैं, तो खुशी होती है ना, एक पुरुषार्थ। और वो सारी मेहनत हमारे राजू भाई जी करते हैं, जो आप सबको मिलता है ताजा ताजा भोजन, वो आपके लिए तैयार करते हैं और रोज भेजते हैं। अवश्य आप भी पुरुषार्थ में अब लगेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर से राजू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया।